नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र तिवारी
और मैं अंजलि जोशी आप सभी दोस्तों का जब चले शहर की ओर कार्यक्रम की 26वीं कड़ी में स्वागत करते हैं। नरेंद्र, मुझे पता चला है कि तुम हिंदी फिल्में बहुत ज्यादा देखते हो।
हाँ तो
भाई, मुझे तो ये सारी हिंदी फिल्में एक जैसी दिखती हैं। अब किसी भी हिंदी फिल्म को उठाकर देख लो, फिल्म में हीरो को प्यार में जरा सी नाकामी क्या मिली, बस पीना शुरू। हीरो के साथ कुछ भी बुरा हो, बस जी वो बैठ गया बोतल लेकर। अरे मैं पूछती हूँ, भला ये भी कोई हल है अपनी समस्याओं से निकलने का?
बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ शायद हमारे कुछ प्रवासी दोस्तों को ये गलत फहमी है कि पीने से हम अपने सारे गम भुला सकते हैं।
तो दोस्तों, आज पूरे एपिसोड में हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं और इस विषय में दी जाने वाली जानकारी के सिलसिले में या फिर प्रवास से जुड़े किसी भी मुद्दे पर आपका कोई सवाल है तो आप हमें 9197176782223 पर अपना सवाल SMS कर सकते हैं।
दोस्तों, ये कार्यक्रम फोर्ड फाउंडेशन और इक्वल एक्सेस के वित्तीय सहयोग से आइडियो सिंक मीडिया कंबाइन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आइए अब सुनते हैं धारावाहिक शहर की ओर की अगली कड़ी।
दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने सुना, मुंबई में राजेश कविता से अपने प्यार का इजहार करता है और कविता उसे स्वीकार कर लेती है, लेकिन शादी की बात पर कविता कहती है कि वो शादी तभी करेगी जब उसमें उसके माता पिता की सहमति होगी। इधर दिल्ली में ढाबे का मालिक चंदर की पिटाई कर देता है और उसे बिना पैसे दिए काम से निकाल देता है। आइए अब सुनते हैं कि शहर की ओर में आगे क्या होता है।
लगता है दीदी की डिलीवरी आज ही होगी, हमें दीदी को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए।
अरे अस्पताल कौन सा यहाँ पास में रखा है, ये बस ऐसे ही थोड़ा सा दर्द है, अभी कुछ नहीं होने वाला, अस्पताल कल जाएं तो भी बहुत है।
माँ तुम देख रही हो फिर भी ये सब कह रही हो?
अरे तीन तीन बच्चे जने हैं मैंने, मुझे पता है कब बच्चा होगा, देख लेना कल से पहले कुछ नहीं होने वाला।
ओहो माँ, मधु तुम मीरा का ध्यान रखो, उसको खाट पर लेटा दो, मैं जरा शंकर के यहाँ होकर आता हूँ।
जी।
उसका एक दोस्त जीप चलाता है, शायद वो हमारी मदद कर सके।
दीदी माँ को क्या हुआ है?
माँ को कुछ नहीं हुआ है नकुल, जल्द ही तेरे साथ खेलने के लिए एक नन्हा सा दोस्त आने वाला है।
वो मुझसे भी छोटा होगा?
हाँ तुमसे भी छोटा, बिल्कुल इतना सा।
इतना सा?
हाँ इतना सा।
हे भगवान, इस सिलाई मशीन को भी अभी खराब होना था।
ओहो अब कौन आ गया? आ रही हूँ। अरे बाबा आ रही हूँ।
अरे चंदर तुम इस वक्त, सब कुछ ठीक तो है?
नहीं कल्पना, कुछ भी ठीक नहीं है।
अच्छा तुम पहले अंदर आओ।
हाँ
हाँ अब बताओ हुआ क्या?
क्या बताऊँ कल्पना, ढाबे के मालिक ने मेरे साथ धोखा किया।
क्या मतलब?
थोड़ा खाना क्या गिर गया हाथ से, मुझे गालियाँ देकर पीटने लगा और फिर मुझे नौकरी से निकाल दिया।
और पैसे?
पैसे भी नहीं दिए कल्पना।
मैंने तुमको पहले ही बोला था, कहीं पर भी काम करो पैसों की बात साफ कर लो। दे दिया ना धोखा, नौकरी भी गई, रहने की जगह भी, और जो पैसे मारे गए वो अलग।
लेकिन मुझे क्या पता था कि वो आदमी ऐसा निकलेगा।
इन बड़े शहरों में कोई किसी का नहीं होता चंदर, और किसी की बातों पर यूं ही विश्वास नहीं कर लेना चाहिए।
लेकिन अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ, किससे मदद मांगूँ, मेरे तो सारे पैसे भी खत्म हो गए हैं, घर पर भी पैसे भेजने थे, पता नहीं मैं क्या करूँगा कल्पना।
सब ठीक हो जाएगा चंदर, तुम 200 रुपए मुझसे ले लो।
लेकिन कल्पना मैं तुमसे।
अरे जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएं तो लौटा देना चंदर।
वैसे अगर इस वक्त उमेश होता तो।
तुम्हें उस पर अब भी भरोसा है?
कल्पना उसने गाँव में भी कई बार मेरी मदद की है। वैसे क्या तुम्हारे पास उसका नंबर है?
हाँ नंबर तो है, मैं देती हूँ।
हे भगवान।
माँ जीप का इंतजाम हो गया है, बस हमें मीरा को रोड तक लेकर जाना होगा।
ठीक है बेटा।
लेकिन माँ किसी एक और को साथ चलना होगा।
जेठा जी मैं चलती हूँ आपके साथ।
नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है। चल हरिंदर बेटा मैं चलती हूँ तेरे साथ।
नहीं नहीं माँ आप यहीं रहो, बुआरी को चलने दो मेरे साथ।
हरिंदर भाई जी जल्दी करो।
हाँ बस चलते हैं शंकर, तुम जरा ये खाट उठवाने में मदद करो।
जी भाई जी।
दीदी दीदी थोड़ी देर और हिम्मत रखिए।
सब कुछ खत्म हो गया उमेश, क्या क्या सोचकर आया था मैं शहर में, कुछ काम करूंगा पैसे कमाऊंगा।
अरे चंदर तू तो ऐसे परेशान हो रहा है जैसे तू पहला इंसान हो जिसके साथ शहर में ऐसा हुआ हो।
लेकिन अब मैं गांव जाकर घर पर क्या जवाब दूंगा सबको।
अरे तो कौन कह रहा है कि गांव वापस जा।
लेकिन अब मेरे लिए यहाँ बचा भी क्या है।
एक काम कर ये ले तेरी हर परेशानी की दवा।
नहीं उमेश तुम्हें तो पता है कि मैं।
हाँ हाँ मुझे पता है, ये जो तेरे मन में परेशानियों का तूफान मचा हुआ है ना ये सब पीने के बाद शांत हो जाएगा। चल पी ले। अरे तू तो मेरा भी गुरु निकला, एक ही झटके में सारी नीचे उतार गया। वेटर एक और ला दे।
दीदी दीदी बस बस दीदी हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए हैं।
मैडम ये मेरी पत्नी है।
हाँ एक मिनट जरा चेक करती हूँ। डिलीवरी का समय हो गया है, वार्ड बॉय इन्हें ओटी में लेकर चलो। आप लोग यहीं बैठकर इंतजार कीजिए मैं देखती हूँ।
जी। हे भगवान सब कुछ ठीक हो जाए।
भैजी आप परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक ही होगा। मैं आपके लिए पानी लाती हूँ।
नहीं मधु इसकी जरूरत नहीं है। मधु मेरे साथ यहाँ आने के लिए बहुत धन्यवाद।
भैजी ये आप क्या कह रहे हैं, मीरा दीदी मेरे लिए बड़ी बहन से भी बढ़कर है और वैसे भी ये तो मेरा फर्ज है।
चंदर वाकई बहुत खुशकिस्मत है जो उसे तुम जैसी पत्नी मिली। अच्छा उसकी कोई खबर?
एक महीने पहले बात हुई थी फोन पर, बता रहे थे नौकरी मिल गई है, अब कुछ पैसे भी भेजने की बात कर रहे थे।
अरे तुमने भी कोई काम शुरू किया है ना?
हाँ जूस बनाने का काम है, घर पर ही काम करना है।
ये तो बहुत अच्छी बात है।
ये सब कुछ मीरा दीदी की वजह से हो पाया है।
अच्छा?
हाँ उन्होंने ही मुझे कुछ काम करने की सलाह दी थी।
मीरा बहुत समझदार है मधु, एक मैं ही बेवकूफ था जो उसकी बातों को मैंने कभी गंभीरता से नहीं लिया। हे भगवान अब क्या होगा।
आप घबराइए नहीं भैजी, सब ठीक होगा, डॉक्टरनी जी अभी आती होंगी।
उमेश तू ठीक कहता था, ये तो सचमुच बहुत अच्छी चीज है।
है ना
हाँ, और ये जगह भी बहुत अच्छी है।
चल अब मैं तुझे इससे भी अच्छी जगह लेके चलता हूँ।
वो कहाँ?
जीबी रोड चलेगा?
क्या करना है वहाँ?
इन लोगों ने ले लेना दुपट्टा मेरा। चल उठ अभी रात बाकी है मेरे दोस्त।
दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जब चलें शहर की ओर, और आपने सुना कि कैसे अपनी परेशानियों को भूलने के लिए चंदर ने आखिरकार उमेश की राह अपना ही ली।
लेकिन नरेन ऐसा करने से क्या चंदर की समस्याएं सुलझ जाएंगी या फिर और बढ़ जाएंगी?
अंजलि ये तो हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल वक्त है हमारे अगले सेगमेंट का।
अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी। दोस्तों हमने लोगों से पूछा कि परिवार से दूर शहर में काम करने के दौरान क्या एक प्रवासी की जिंदगी में टेंशन बढ़ जाती है, और अगर बढ़ती है तो वो इससे कैसे जूझते हैं।
तो सुनते हैं उनके विचार हमारे अगले सेगमेंट में।
हाँ प्रवासी यहाँ पे आके नशे का सेवन करते हैं और घर के टेंशन के कारण वो यहाँ पे आके पीना शुरू करते हैं, और ऐसा नहीं है कि वो कहीं फिल्म देखते हैं या मौज मस्ती करते हैं, ऐसा कोई नहीं है, या कहीं जीवी रोड जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आके वो अपने नशे के इतने आदि हो जाते हैं कि वो ना अपने घर की टेंशन देख पाते हैं ना अपना यहाँ पे फ्यूचर देख पाते हैं, और इसी में अपना जीवन व्यस्त कर देते हैं।
टेंशन तो खैर है मुझे, लेकिन मैं ऐसा पीने का और कोई गलत काम तो मैंने करता नहीं हूँ, लेकिन अगर मेरे को टेंशन हो जाता है तो कोई मैं अच्छा मैगजीन लाता हूँ, मैगजीन पढ़ता हूँ, टीवी वगैरह देखता हूँ, और फिर भी अगर मेरा टेंशन थोड़ा दूर नहीं होता है तो मैं किसी अच्छा पार्क या गार्डन में जाकर अपना टेंशन थोड़ा दूर कर लेता हूँ, और इस तरीके से मैं मेरा टेंशन भी थोड़ा दूर हो जाता है और मैं अपने घर की जिम्मेदारी और अपना जो भी जिम्मेदारी है मैं उसको अच्छी तरीके से निभाता हूँ।
हाँ पीते हैं, अयाशी करते हैं, जीबी रोड जाते हैं, जब उससे भी उनका वो नहीं दूर होता तो परिवार को सताते हैं।
तो तो दोस्तों ये तो थे हमारे प्रवासी दोस्तों के विचार।
नरेन तुम्हें नहीं लगता कि ये टेंशन कम करने के चक्कर में या फिर मस्ती के लिए कई बार हम ऐसी राह की तरफ मुड़ जाते हैं जो हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए जोखिम भरी हो सकती है?
तुम किस तरह के जोखिम की बात कर रही हो अंजलि?
नरेन इसके बारे में हम जानेंगे हमारे अगले सेगमेंट में, क्योंकि हमारे सामुदायिक संवाददाता ने बात की है सहारा हाउस संस्था से, जो कि दिल्ली में नशा मुक्ति के लिए और एचआईवी संक्रमित लोगों के लिए काम कर रही है।
तो चलो सुनते हैं हमारा अगला सेगमेंट कुछ विश्वास।
नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं सहारा हाउस में और यहाँ पर हम बात करते हैं श्री फ्रांसिस जोसेफ जी से। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। क्या आप हमें बताएंगे कि जोखिम भरा व्यवहार क्या होता है और इसे जोखिम भरा व्यवहार क्यों कहते हैं?
जोखिम भरा व्यवहार जानने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि इसे क्यों जोखिम भरा व्यवहार बोलते हैं। तो ये है कि जो भारत का राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन है नैको, उसने कुछ लोगों को इस श्रेणी में डाला है जो कि जोखिम भरे व्यवहारों में ज़्यादा लिप्त रहते हैं। जैसे कि नंबर वन, जो महिलाएं पैसों के लिए सेक्स वर्क करती हैं। नंबर टू, जो पुरुष पुरुषों के साथ समलैंगिक सेक्स करते हैं। और तीसरा, वो जो इंजेक्शनों के द्वारा से नशे का सेवन करते हैं। इन्हीं व्यवहारों को हम लोग जोखिम भरा व्यवहार कहते हैं, क्योंकि इसमें एचआईवी का ज़्यादा खतरा है।
यह प्रवासियों के लिए इतना बड़ा मुद्दा क्यों है?
जिस तरह से हम समलैंगिक पुरुषों की बात कर रहे हैं या महिलाओं की बात कर रहे हैं जो कि सेक्स वर्क करती हैं, तो उनके पास जो है प्रवासी लोग जो होते हैं वो भी जाते हैं, वो वहाँ पर उनके साथ असुरक्षित सेक्स संबंध बनाते हैं। क्योंकि सारे जो प्रवासी लोग हैं उनको सुरक्षा के साधन का नहीं पता है। सुरक्षा के साधन में मैं बात करूँगा कि उनको कॉन्डम यूज़ के बारे में, कॉन्डम के इस्तेमाल के बारे में नहीं पता है। तो वो बिना कॉन्डम के सेक्स करते हैं, संक्रमित हो जाते हैं और उन्हें अपने स्टेटस के बारे में नहीं पता लगता कि वो संक्रमित हो चुके हैं। और अगर उसका वही जोखिम भरा व्यवहार रहा तो वो जितने लोगों से असुरक्षित संबंध बनाएगा उतने लोगों को संक्रमित करता जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा ध्यान देने वाला मुद्दा है आजकल।
प्रवासियों को ऐसी आदतों से बचने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, क्या क्या करना चाहिए?
देखिए, मैं ये नहीं कहता कि ये आदतें अच्छी है या अच्छी नहीं है। अगर कोई सेक्स करता है तो हम उसे रोक नहीं सकते कि भैया ये मत करो, ये गलत चीज़ है। उसे ये जानकारी होनी चाहिए कि मुझे सेक्स तो करना है लेकिन अपने बचाव के साथ सेक्स करना है। इसके लिए सरकार ने जगह जगह पर कॉन्डम वेंडिंग मशीन्स लगा रखी हैं, कई ऐसे एनजीओ हैं, कई ऐसी संस्थाएं हैं जो कि मुफ्त में कॉन्डम्स बांटती है। और जो लोग नशा लेते हैं उनके लिए भी अब जगह जगह पर नीडल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम खुल गए हैं, जहाँ पर कि वो अपनी पुरानी सुई सिरिंज देकर और नई सुई सिरिंज ले सकते हैं। कोई भी हमारा मित्र जो किसी दूसरे प्रांत से आता है और वो दिल्ली में कदम रखता है या किसी भी शहर में कदम रखता है, तो उसे सबसे पहले तो मतलब जिस काम से वो आया है उस काम को देखना चाहिए। तो उसको जागरूक रहने की बहुत ज़रूरत है कि दो चार पल की मस्ती या दो चार पल के मौज मस्ती के लिए वो अपनी सारी ज़िंदगी ख़राब कर लेंगे, है ना। यही मैं अपने प्रवासी मित्रों को कहना चाहूँगा कि जितना अपनी प्रोटेक्शन करेंगे, जितना अपने आप को बचा के रखेंगे, उतने में ही उनकी भलाई है।
नरेन, ये जो हम बात कर रहे हैं एचआईवी की, इससे बचने का सबसे सस्ता और आसान उपाय है कॉन्डोम का इस्तेमाल।
सही कहा।
तो क्यों ना अब इसके सही ढंग से इस्तेमाल की भी जानकारी हमारे श्रोताओं को दे दी जाए।
बिल्कुल अंजलि, लेकिन इसके लिए मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगा भैजी को।
तो देर किस बात की, चलिए बुला लेते हैं भैजी को।
मैं हूँ भैया भाई सब, मुझसे करो सवाल, बात हो छोटी बड़ी हो या फिर हल देता हूँ निकाल, बात करता हूँ लाखपति की, पूछो कोई सवाल, क्योंकि मैं हूँ भैजी लाल, मैं हूँ भैजी लाल।
नमस्कार नरेन। नमस्कार अंजलि।
नमस्कार भैजी।
भाई, मुझे सुनने में आया है कि आज आप दोनों कॉन्डोम के विषय में बात करने वाले हैं।
जी भाई जी, आज हम कॉन्डम के सही ढंग से इस्तेमाल के बारे में अपने श्रोताओं को बताने जा रहे हैं।
तो बस इसके लिए हमने आपको फौरन यहाँ बुला लिया। अब आपकी बात तो लोग मानते भी हैं और समझते भी हैं।
तो भाई जी, आप ही बताइए हमारे श्रोताओं को कि वो कॉन्डम का सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं।
बिल्कुल बताते हैं भाई। सबसे पहली बात तो ये कि जो कॉन्डोम है वो लिंग पर पहना जाने वाला एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो अनचाहे गर्भ से और कई तरह के यौन रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। ये महिला और पुरुष दोनों के लिए मिलते हैं।
लेकिन भाई जी, आज हम चाहेंगे कि आप पुरुषों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कॉन्डोम के बारे में हमें बताएं।
ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका मकसद समझ लें। कॉन्डोम का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि वीर्य की बूंदें महिलाओं की योनि के भीतर न जाएं, जिससे गर्भ ठहरने का खतरा टला रहे।
तो भाई जी, ये तो गर्भाधान से बचने का सबसे आसान उपाय हो गया।
बिल्कुल, लेकिन ये तभी हो सकता है जब इसका सही ढंग से इस्तेमाल हो।
और भाई जी, वो कैसे?
बताता हूँ। हाँ, तो दोस्तों, कॉन्डोम को संभोग से पहले उत्तेजित लिंग पर पहना जाता है। कॉन्डोम को पैकेट से बाहर निकालने के लिए अपने दांतों या फिर कैंची अथवा ब्लेड का इस्तेमाल कतई ना करें। सावधानी से पैकेट खोलिए ताकि कॉन्डोम फट ना जाए। और हाँ, एक बात का जरूर ध्यान रखें, कॉन्डोम को पहनने के समय ही खोलना चाहिए।
जी भाई जी।
और अब हम आपको बताते हैं कि कॉन्डोम का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। कॉन्डोम की नोक को पकड़े हुए उत्तेजित लिंग पर सावधानी से चढ़ाएं। जब कॉन्डोम पूरी तरह से लिंग पर चढ़ जाए तो कॉन्डोम के नोक वाले हिस्से को दबाकर उसके भीतर की हवा निकाल दें ताकि वीर को गिरने के लिए आवश्यक जगह मिले।
जी भाई जी।
और हाँ, संभोग के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि कॉन्डोम कहीं बाहर ना निकल पड़े, और यौन प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसको ध्यान से उतारें
और इसे गांठ बांधकर किसी अखबार या कागज के टुकड़े में लपेटें और कचरे के डिब्बे में डाल दें या फिर जमीन में गाड़ दें।
एक बात और कि एक कॉन्डोम का इस्तेमाल केवल एक ही बार किया जा सकता है। और हाँ, दो कॉन्डोम इस्तेमाल करने से सुरक्षा दुगनी नहीं हो जाती।
जी भाई जी।
और भी छोटी छोटी बातें हैं, जैसे कि कॉन्डोम को अपने जेब में या पर्स में ज्यादा समय तक न रखें, क्योंकि कॉन्डोम लेटेक्स का बना होता है और गर्मी की वजह से खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। और अंत में सबसे खास बात यह है कि इसे खरीदने से पहले एक्सपायरी डेट देखना ना भूलें।
लेकिन भैजी, जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते वो लोग एक्सपायरी डेट कैसे देखेंगे?
बिल्कुल सही प्रश्न। जो पढ़ लिख नहीं सकते उनके लिए भी आसान तरीका है। कॉन्डोम के पैकेट को उंगलियों से दबाकर देख लें कि पैकेट के भीतर चिकनाई बरकरार है या नहीं।
जी भैजी।
तो दोस्तों, ये थी कॉन्डोम से जुड़ी कुछ खास बातें जिनके बारे में जानकारी देने भैजी हमारे स्टूडियो में आए। भैजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद अंजलि।
Thank you. सुख दुख हंसी मटारी दे भाग मा जुबी होलो सुख दुख हंसी मटारी दे छुट्टी की बे बाबू की खोली भलू बुरु पछाणी छुट्टी की बे बाबू की खोली भलू बुरु पछाणी वे बाबू की आँखों मा चूंदू रहेगी पानी वे बाबू की आँखों मा चूंदू रहेगी पानी
और अब बढ़ते हैं काम की बात की ओर। अंजलि, जब तुमने मुझे बताया था कि हम आज के एपिसोड में कॉन्डम से जुड़ी लोगों की भ्रांतियों यानी कि गलत फहमियों के बारे में बात करने वाले हैं, बस मैंने तभी फैसला कर लिया था कि मैं अपने दोस्तों से भी इस बारे में पूछूंगा।
तो क्या कहा उन्होंने?
बहुत कुछ, और कई लोगों को तो अपनी भ्रांतियों पर पूरा विश्वास है।
लेकिन दोस्तों, अब हम इस कार्यक्रम के जरिए आपकी उन सारी गलतफहमियों को दूर कर देंगे। इससे पहले कि मैं आपको आगे की बात बताऊं, आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि पुरुषों के लिए बनाए गए कॉन्डोम्स पतली लेटेक्स रबड़ के बने होते हैं और इसे संभोग से पहले लिंग पर पहना जाता है। इसके इस्तेमाल से अनचाहे गर्भ और यौन संक्रमण दोनों से बचा जा सकता है।
तो अंजलि, एक दोस्त ने तो यहाँ तक कहा कि कॉन्डम के इस्तेमाल से संभोग का सुखद एहसास कम हो जाता है, लेकिन क्या आज के समय में ये बात सही है?
बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब जो कॉन्डोम्स बाजार में उपलब्ध हैं, वो बहुत ही पतली लेटेक्स के बने होते हैं, जो आपके सुखद एहसास को कम नहीं करते बल्कि आपको यौन रोगों और HIV से सुरक्षा प्रदान करते हैं।
दोस्तों, अगर आप कॉन्डम की बनावट और इसके आकार को देखें तो आपको पता चल जाएगा कि इसको आपकी सुविधा के अनुसार ही आकार दिया गया है और आप इसे आसानी से पहन सकते हैं। और अंजलि, कुछ लोग तो कॉन्डम का इस्तेमाल करने से इसलिए भी डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये काफी तकलीफ देह होता है।
नरेन, मैं तुम्हें बता दूं कि कॉन्डोम में मुख्यतः सिलिकॉन या वाटर बेस्ड ल्यूब्रिकेंट्स तत्व होते हैं, जो कि बिल्कुल भी तकलीफ देह नहीं होते। लेकिन दोस्तों, अगर आपका ऐसा कोई अनुभव रहा है या फिर आप कॉन्डोम के इस्तेमाल से पीड़ा महसूस करते हैं, तो आपको तुरंत डॉक्टर से अपने यौन स्वास्थ्य की जांच करवानी चाहिए।
दोस्तों, अनचाहे गर्भ से बचने के तो कई उपाय हैं, लेकिन HIV से बचने का यही एक आसान उपाय है, यानी कॉन्डम का सही ढंग से और हर बार इस्तेमाल।
हाँ दोस्तों, किसी से प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन अगर ये प्यार स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर किया जाए तो और भी अच्छी बात है, क्यों नरेन?
बिल्कुल अंजलि। और दोस्तों, अगर अब भी आपके मन में कोई सवाल है या फिर आप कुछ और जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें अपना सवाल हमारे फोन नंबर पर SMS कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9197176723। और दोस्तों, अब वक्त हो चला है सेगमेंट आपकी चिट्ठी का।
हमारे आज के विजेता हैं राकेश कोठारी, जिन्होंने हमें बदरपुर दिल्ली से चिट्ठी लिखी है। ये लिखते हैं कि सन 2003 की बात है, मेरे घर वालों ने मुझे संस्कृत पढ़ने के लिए दिल्ली भेजा, जहां मैं अपने मामा जी के पास रहता था। कुछ महीने मैंने वहां पर बिताए, पर जब मुझे लगा कि मामा जी के परिवार को मुझसे परेशानियां हो रही हैं, तो मैंने अपने घर वालों को बताया। उन्होंने मुझे उसी स्कूल के हॉस्टल में दाखिला दिलवा दिया, लेकिन अंदर गया तो मेरे साथ और भी बुरा हुआ। वहाँ लड़कों ने रैगिंग के नाम पर मेरे साथ बहुत बुरा सुलूक किया, साथ ही मारा पीटा भी। ये बात भी सच है कि पढ़ने लिखने में मैं पहले से ही कमजोर था, बस मुझे तो फिर बहाना ही मिल गया स्कूल छोड़ने का। मैंने स्कूल छोड़ा और मस्ती करने के लिए बाहर फैक्ट्री में काम करने लगा। एक फैक्ट्री से दूसरी में और दूसरी से तीसरी में भटकता रहा, पर कहीं भी अच्छा काम नहीं मिला। और आज भी मैं मात्र 2500 रुपए प्रति माह की नौकरी पर पूरे 10 घंटे काम करता हूँ। अब यही सोचकर पश्चाताप करता हूँ कि काश उस समय मैंने थोड़ी परेशानियाँ झेलकर पढ़ लिया होता तो आज मुझे ये दिन न देखना पड़ता। आगे इन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात लिखी है नरेन। ये लिखते हैं कि किसी ने सच ही कहा है कि नदी की तेज धारा के थपेड़े खाने वाला पत्थर ही सुडौल तथा चमकदार होता है, न कि किनारे पड़े रहने वाला पत्थर। राकेश कोठारी जी, आपकी चिट्ठी पढ़कर हम यही कहेंगे कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन आप निराश न हो और एक अच्छा और कामयाब मकाम हासिल करने के लिए कोशिशें जारी रखिए। यकीन मानिए, मेहनत हमेशा रंग लाती है।
और राकेश जी, जहाँ तक बात है पढ़ाई की, तो पढ़ाई लिखाई की कोई उम्र नहीं होती। आप चाहें तो दोबारा पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपकी चिट्ठी के लिए आपको मिलता है एक खूबसूरत सा ट्रैवल बैग।
और दोस्तों, अगर आप चाहें तो आपके हिस्से में भी एक ऐसा ही ट्रैवल बैग आ सकता है इनाम के तौर पर। बस इसके लिए अपने खट्टे मीठे प्रवास से जुड़े अनुभव चिट्ठियों के जरिए हमें भेजते रहिए।
आप हमें अपनी चिट्ठियाँ इस पते पर भेज सकते हैं। पता है कार्यक्रम जब चलें शहर की ओर, 177 बेसमेंट अशोका एनक्लेव पार्ट 3, सेक्टर 35, फरीदाबाद, हरियाणा 121003।
इसके अलावा आप हमें अपने प्रवास से जुड़े खट्टे मीठे अनुभव ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है shaharkiore@gmail.com।
और दोस्तों, अब बारी आती है आज के संदेशों की।
मेरा नाम पुष्पा कोठारी था और मैं गांव हडम में रहने वाला हूँ। और मैं ये संदेश दे रहा हूँ अपनी दादाजी और देने लगी हूँ। उनको नाम अनिल कोठारी था, सुनील कोठारी और प्रमोद कोठारी। और मैं उतने मैसेज देना चाहता हूँ कि तुम उन कैदन बिटिन फोन नहीं करी। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि फोन करें। और तीनों चाची ते और दादाजी हो रहे हैं, ये बताना चाहता हूँ कि हडम आ जान। और फिर उतना ये बोलना चाहता हूँ कि हाँ, और मैं दादाजी हो के स्वास्थ्य खातिर हम प्रार्थना कर लूँ।
मेरा नाम रजनी खंडूड़ी है। मैं अपने भाई अशोक मुंगाई के लिए बम्बई में संदेश देना चाहती हूँ। अभी वो शुरुआत ही कर रहा है फिल्मी लाइन में जाने की, तो मैं उसको ऐसा चाहती हूँ कि वो अपने करियर में पूरी सफलता बनाए, सफल हो जाए।
मेरा नाम सुरेश पटवाल है। मैं चम्मा में रहता हूँ, मसूरी रोड पे रहता हूँ, कनाताल में मेरा घर है। और मेरा फ्रेंड दिल्ली में रहता है, विनय सरोल उसका नाम है। और मैं अपने दोस्त के लिए मैसेज भेजता हूँ कि आप वहाँ पे हो और मैं आपको यहाँ पे बहुत मिस कर रहा हूँ।
मेरा नाम अनीता भट्ट है। मैं अपने हस्बैंड को संदेश भेज रही हूँ। उनका नाम आबिद प्रसाद भट्ट है, वो सहारनपुर के सरसावा में रहते हैं। मैं उनको संदेश भेजना चाह रही हूँ। हमारा मकान का काम चल रहा था, वो अभी पूरा हो चुका है। अब आप घर छुट्टी आने की कोशिश करना।
दोस्तों, अगर आप भी अपना कोई संदेश अपने परिवार वालों या रिश्तेदारों को भेजना चाहते हैं तो तुरंत हमें अपना नाम और पता हमारे नंबर पर SMS कर दीजिए। नंबर है 9197176782। हम आपके संदेशों को रिकॉर्ड करके अपने कार्यक्रम में शामिल करने की कोशिश करेंगे।
और अगर आपके पास प्रवास से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण जानकारी है तो वो आप हमें चिट्ठियों के जरिए भेज सकते हैं। हम उन्हें अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे ताकि दूसरे प्रवासी श्रोता भी उनका लाभ उठा सकें।
हमारे प्रवासी दोस्त मिलजुल कर अपना एक क्लब तैयार करें और उसकी गतिविधियों की जानकारियां भी हमें जरूर भेजें।
इसी के साथ हम अपने सहयोगियों हेवलवाणी चंबा और मंदाकिनी की आवाज़ भणज का भी धन्यवाद करना चाहेंगे।
और हाँ, अपने खट्टे मीठे प्रवास से जुड़े अनुभव के साथ चिट्ठियां जरूर लिखते रहिएगा और ईमेल भी करते रहिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस और पता आप एक बार फिर नोट कर सकते हैं। ईमेल आईडी है shaharkiore@gmail.com, यानी shaharkiore@gmail.com।
और हमारा पता है कार्यक्रम जब चलें शहर की ओर, 177 बेसमेंट अशोका एनक्लेव पार्ट 3, सेक्टर 35, फरीदाबाद, हरियाणा 121003।
तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है आपसे इजाजत लेने का,
लेकिन अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ।
तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।
नमस्कार।